ओम शांति। निश्चय बुद्धि विजयंती कहा जाता है और बाबा के सभी बच्चे बाबा के बनते ही निश्चय बुद्धि तो है ही है। शास्त्र के अंदर दो कैरेक्टर दिखाए हैं, एक अर्जुन का और एक हनुमान का। हम सभी कौन है, अर्जुन है या हनुमान है, क्या कहेंगे? हम सभी अर्जुन है या हनुमान है? अर्जुन भी है हनुमान भी है, दोनों तो नहीं हो सकते, एक ही होना चाहिए। महावीर हो, बाबा ने आज कहा मुरली में, तुम सभी महावीर हो। क्यों ये बात पूछी हमने? क्योंकि अर्जुन के मन में प्रश्न ही प्रश्न था। भले वो भगवान को सखा भी कहता था, मित्र भी मानता था, लेकिन फिर भी निश्चय नहीं था। विश्वरूप दर्शन कराने के बाद भी उसके मन में कई प्रश्न थे। लास्ट में 18 अध्याय में जब भगवान ने पूछ लिया, अब तेरा मोह नष्ट हुआ, यानी अब तेरे सवाल समाप्त हुए कि नहीं हुए, तब कहा हाँ, अब मुझे स्मृति आ गई, मैं स्मृति स्वरूप हो गया और अब मेरा मोह भी नष्ट हो गया, अब मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। जब ऐसा निश्चय बुद्धि बन जाता तो फिर विजयी हुआ। और हनुमान को कोई प्रश्न ही नहीं, वो पहले दिन से ही निश्चय बुद्धि है। दिल में एक बाबा, दूसरा न कोई, एक राम के सिवाय और कोई नहीं। और इसीलिए जब दिल में एक बाबा समाया हुआ है तो उसको प्रश्न होते ही नहीं है। फिर भी जब कहते हैं निश्चय बुद्धि, निश्चय मन नहीं कहा, निश्चय दिल नहीं कहा, निश्चय बुद्धि कहा, क्योंकि बुद्धि से ही सही गलत को अच्छी तरह समझना है और समझते हुए उसको निर्णय करते हुए अपनाना है। तो इसीलिए जब निश्चय बुद्धि कहा, अर्थात जिसकी बुद्धि हंस समान नीरक्षीर को अलग कर सके, ऐसी जब प्योर और क्लियर बुद्धि हो जाए तो कोई सवाल नहीं, कोई मन में और कोई विकल्प नहीं, और तब कहते हैं निश्चय बुद्धि है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं, निश्चय में कंफ्यूजन नहीं होता है। कई बार कई लोग कहते बाबा में वैसे तो मैं निश्चय है, लेकिन कभी कभी अनुभव नहीं होता है, साथ का अनुभव नहीं होता है, तो उसको निश्चय बुद्धि कहेंगे। तो निश्चय बुद्धि माना जहां और कोई विकल्प ही नहीं है, ओनली वन, उसको कहते निश्चय बुद्धि 100%। बाबा की मुरलियों में इसीलिए सुनते हैं कि निश्चय में कभी परसेंटेज नहीं होता है, और अगर परसेंटेज है माना निश्चय नहीं है, उसमें फुल होते हैं। और निश्चय बुद्धि जो है उसके चार लक्षण है। कौन से चार लक्षण? तो पहला है निश्चित भावी को जानता है, जब 100% निश्चय है तो निश्चित भावी को जानता है कि जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा, अच्छा ही अच्छा है। इसीलिए बाबा कहते हैं जो निश्चय बुद्धि बच्चे होते हैं ना, वो वाह वाह के गीत गाते, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। निश्चित भावी को जानते हैं कि ये भावी में कभी भी कोई बुरा हो ही नहीं सकता है, अच्छा ही अच्छा है। अगर उस चीज के लिए, उसको अच्छा करने के लिए मुझे युद्ध करना पड़ रहा है तो निश्चय नहीं है, तभी युद्ध है। निश्चय है, निश्चित भावी को जानते हैं तो वहां युद्ध नहीं, क्योंकि बहुत अच्छा है, भावी बहुत अच्छी है, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला वो भी बहुत अच्छा। सारा गीता का सार उसी में समझा दिया भगवान ने अर्जुन को, सब कुछ अच्छा है। तो निश्चित भावी को बहुत अच्छे से जानना। दूसरे लक्षण है उसका निश्चिंत रहना। जो निश्चित भावी को जानते हैं कि वाह वाह ही है, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे आप ये वाह वाह के गीत गाते जाओ, अगर वाह वाह नहीं होगा तो वाह वाह हो जाएगा, नहीं होगा तो भी हो जाएगा, सब अच्छा ही है, ये गीत गाते चलो। अगर कुछ बुरा होगा भी, बाहर का स्वरूप कल्याण का होगा भी, तो भी वो अच्छा हो ही जाएगा। इसलिए ये निश्चित भावी को जानते हुए निश्चिंत, उसमें व्यर्थ संकल्प नहीं चल सकता है। अगर व्यर्थ संकल्प चला या ये डाउट के संकल्प आया, पता नहीं हम ऐसा कर तो रहे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं, इसको संशय बुद्धि कहेंगे। निश्चय बुद्धि माना निश्चिंत, रिजल्ट फाइनल रिजल्ट बहुत अच्छी है, उसमें कोई व्यर्थ चलने की मार्जिन नहीं, व्यर्थ संकल्प चलाने की मार्जिन नहीं है। क्योंकि बाबा की एक वाणी मुझे याद आती है, जिस मुरली में बाबा ने कहा था, साकार मुरली थी, तो साकार मुरली में बाबा ने कहा था कि ड्रामा वफादार है, ड्रामा वफादार है, मनुष्य हो ना हो लेकिन ड्रामा हर एक के साथ न्याय करता ही है, ड्रामा इतना वफादार है, हर एक के कर्म के हिसाब से ड्रामा उसके साथ न्याय करता ही है। दुनिया के अंदर भले आज इतने कोर्ट कचहरी है, सब कुछ चल रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी ड्रामा न्याय करता है। तो कहानी एक बहुत अच्छी याद आती है कि एक बार एक राजा वेश बदली करके अपने नगर का हालचाल देखने निकला था, तो उसने देखा कि एक व्यक्ति जो है ऐसे मुंह छुपाते हुए जा रहा था, तो उसने कहा कि ठहरो भाई, तुम कौन हो? तो राजा तो सिंपल वेश में थे, तो उन्होंने पहचाना नहीं कि राजा है, तो उसने सच बोल दिया कि मैं चोर हूं। तो कहा कि कहां जाने का इरादा है चोरी करने के लिए? तो कहा आज मेरा इरादा है राजा के महल में चोरी करूं। कृष्ण, अच्छा बड़ी हिम्मत है तेरे अंदर तो, ठीक है जाओ आगे बढ़ो। तो उसने बराबर उसका चेहरा देख लिया था। तो जब चेहरा देख लिया था तो दूसरे दिन जैसे ही सुबह हुई तो भाई राजा के महल में चोरी हो गई, बहुत अफवाह फैल गई, हल्ला हो गया एकदम, चोरी हो गई। अब जिस व्यक्ति को पकड़ करके ले आए राजा के सामने कि इसने चोरी की है, अब राजा ने तो चेहरा देखा हुआ था और देखा कि ये वो चेहरा तो नहीं है, लेकिन जिस तरह के सबूत दिए गए वो उसके खिलाफ थे और मना उसको सजा की गई कि भाई इतना समय तुम्हें जेल में जाना पड़ेगा। जेल में जब उसको भेज दिया तो राजा ने सोचा कि मैं उस व्यक्ति से मिल के आऊं। राजा उसके पास जाता है और कहता है कि देख भाई, मैं जानता हूं कि तुमने चोरी नहीं की है, राजमहल में कल रात में जो चोर आया था उसको मैंने देखा था और वो तुम तो नहीं था, लेकिन फिर भी सारे सबूत तेरे खिलाफ थे और तुम्हें सजा मिली, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं कि क्या कभी आगे तुमने ऐसा कोई गलत काम किया हो और तुम बच गया हो, उस समय तुम्हें सजा नहीं मिली हो, ऐसा कभी जीवन में हुआ है? तो वो व्यक्ति ने कहा हाँ, इस बार तो मैंने चोरी नहीं की, लेकिन मैंने जीवन में कई बुरे काम किए और हर बार मैं बचता रहा, इस बार कैसे मैं फंस गया मैं समझ नहीं पाया हूं। लेकिन तब राजा को अंदर में एक शांति हुई कि नहीं, समय न्याय करता है, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। ड्रामा इतना वफादार है और इसीलिए ड्रामा, जब बाबा कहते कल्याणकारी है तो ड्रामा परफेक्ट न्याय करते हैं। हाँ, ड्रामा कई बार माफ भी कर देता है, समय देता है, चांस देता है, लेकिन फिर भी अगर नहीं माने, परमात्मा की श्रीमत को बार बार अवज्ञा करते रहे तो फिर ड्रामा वफादार भी है, ड्रामा कभी माफ नहीं कर सकता है। फिर ड्रामा कुछ चांस जरूर देता है लेकिन उसके बाद नहीं। तो इसीलिए कहा समय बहुत बलवान है, समय के आगे कभी किसी का जोर नहीं चलता है, इसीलिए निश्चिंत स्थिति, निश्चित भावी को जानते हुए निश्चिंत। ब्रह्मा बाबा की बात को अगर देखें, जीवन चरित्र को जब हम सुनते हैं कि जैसे ही ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए, ज्ञान कोई स्पष्ट नहीं था बाबा के सामने, लेकिन जैसे ही शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ, विनाश का हुआ, स्थापना का हुआ, नारायण के चारों स्वरूप का हुआ, बस और इतने निश्चय बुद्धि हो गए, निश्चित भावी को जान लिया, मैं ये बनने वाला हूँ बस, और उसके बाद आगे ज्ञान कोई बात का स्पष्टीकरण नहीं था बाबा के पास, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पार्टनर को कह दिया, आप हिसाब कर लो, आप जो देंगे मुझे खुशी होगी। उसके बाद एक व्यर्थ संकल्प नहीं कि पता नहीं उसने हिसाब बराबर किया होगा कि नहीं किया होगा, बराबर आधा आधा बांटा होगा कि नहीं बांटा होगा, मैं एक बार बही खाता देख लूं, चेक कर लूं, मेरे हिस्से में कितना आता है कितना नहीं आता, कोई संकल्प नहीं। और उसके बाद भी ये कहा, अलफ को मिली अल्लाह, बे को मिली जुत्थी बादशाही, और बस मिला तार अलफ का और हुआ रेल का राही। उसके बाद संकल्प नहीं चलाया कि पार्टनर ने बराबर दिया कि नहीं दिया। आज के युग में अगर बाबा की जगह हम लोग कोई हो तो भाई 10 बार हिसाब चेक करना पड़े हमें। उसको निश्चय बुद्धि नहीं कह सकते हैं। निश्चय माने एक विश्वास कि वो हमारा हिस्सा ले नहीं सकता है। जो हमारे हिस्से का है वो आकर के ही रहेगा, उससे ज्यादा वो ले नहीं सकता है। ऐसे वो स्लोगन तो हर जगह हम देखते हैं, भाग्य से अधिक और समय से पहले, है ना, मिल नहीं सकता है, भाग्य से अधिक मिल नहीं सकता है। तो कितनी बार चेक करेंगे हिसाब किताब को भी, और ये अंदर डाउट लाते रहेंगे कि भाई बराबर किया होगा कि नहीं किया होगा। संकल्प चलाना ये निश्चय बुद्धि की निशानी नहीं है। इसलिए कहा, निश्चित भावी को जानते हुए निश्चिंत। तीसरा लक्षण है नशा। और इसीलिए जहां सब कुछ सही है ये जानते हैं, समय वफादार है ये जानते हैं, समय कभी किसी के साथ अन्याय कर नहीं सकता है, जिसका जो पार्ट है उस पार्ट के हिसाब से हर एक को रिजल्ट मिलनी ही है, तब कहा नशे में रहता है वो। नशा माना एक रूहानी फुकुर, जिसको कहा जाए रूहानी अंदर में नशा, अहंकार का नशा नहीं। आज कई बार कई लोगों को देखते हुए लगता है अहंकार में चल रहे हैं, लेकिन अहंकार का नशा नहीं होता है, एक रूहानी नशा। रूहानी नशे में निर्माणता होती है, हर आत्मा का सम्मान होता है। अहंकार के नशे में अपमान होता है, दूसरे का अपमान करना बहुत आसान होता है, लेकिन जिसके अंदर रूहानी नशा होता है वो कभी किसी का अपमान नहीं करता है, और इसीलिए वो इतना ही निर्माण होता है। और निर्माणता के साथ हर एक के साथ उसका व्यवहार होता है, ये है निश्चय बुद्धि की निशानी। ब्रह्मा बाबा के जीवन का नशा देखो कि भले बेगरी पार्ट हो या कुछ भी हो, लेकिन फिर भी बाबा को कभी भी शिव बाबा में एक लेस मात्र भी संशय आया हो और नशे में अंतर आया हो, नहीं, बाबा के अंदर नशा उतना ही था। बेगरी पार्ट के दिन चल रहे हो और बाबा कहे अरे बच्चे छपा दो पेपरों में कि ब्रह्मा कुमारी इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, बेगरी पार्ट है, आना नहीं है, घर में खाने का दाना नहीं है, और फिर भी ये नशा देखो। और फिर जब बच्चे बाबा को देखते थे तो बाबा कहते थे, क्यों बच्चे आपके पास गुणों का धन नहीं है, श्रेष्ठ चरित्र का धन नहीं है, इतने धनवान हो, ज्ञान रत्न नहीं है तुम्हारे पास, इतने धनवान हो तो तुम्हारे जैसे रिचेस्ट कोई है? ये है नशा बाबा का, ज्ञान का नशा। कोई बात में बाबा के चेहरे और चलन में कोई बात का अहंकार दिखाई नहीं दिया। और आजकल तो जैसे कहा जाता है कि चूहे को हल्दी की गांठ मिलती है तो भी पता नहीं पंसारी समझने लगता है, अहंकार इतना अंदर में चढ़ जाता है। और उस अहंकार के अंदर वो कितनों का अपमान कर देते हैं, जहां दूसरों को तुच्छ समझना और अपमान कर देना, तो इसको निश्चय बुद्धि नहीं कहा जाता है। देह अभिमान जहाँ है वहाँ निश्चय जीरो हो जाता है। इसीलिए बाबा कहे, निश्चित भावी को जानते हुए निश्चिंत और नशा। और चौथा लक्षण विजयी, हर बात में विजयी। इसलिए कहा निश्चय बुद्धि विजयंती, ये तीन चीज है तो विजयी हुई पड़ी है, सफलता हुई पड़ी है। अगर ये तीन चीज में नहीं है, परसेंटेज है, तो विजय भी नहीं प्राप्त होती है, विजय जीरो हो जाती है ना। इसीलिए ये तीन चीज जहाँ है तो निश्चय, निश्चित, निश्चिंत और नशा, वहाँ विजय है, इज इक्वल टू विजय। अगर ये चारों नहीं है तो इज इक्वल टू हार। वो हर घड़ी हार का ही अनुभव खाते रहेंगे, हार का ही मुंह देखते रहेंगे, वो कभी विजय का अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे, तुम बच्चों को ऐसे निश्चय बुद्धि बनना है, ऐसा स्वयं में विश्वास, बाबा में विश्वास, ड्रामा में विश्वास और ब्राह्मण परिवार में विश्वास भरपूर हो, जहाँ कहीं पर भी कोई व्यर्थ संकल्पों की मार्जिन न हो, तब कहेंगे कि हाँ निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। और ऐसे संशय बुद्धि जहाँ आएगी, जहाँ क्वेश्चन ही क्वेश्चन हो अर्जुन की तरह, तो फिर जब तक वो निश्चय बुद्धि नहीं बनता है तब तक जैसे मन से हारने का अनुभव करता है, मन से हारने का अनुभव करता है। और जिस दिन निश्चय बुद्धि हो गए तो फिर विजय उसके साथ है। महाभारत में इसीलिए बहुत अच्छी एक आती है बात कि द्रौपदी ने तो सखा के रूप में देखा था भगवान को, लेकिन जब उसके वस्त्र हरण हो रहे थे तो भगवान को पुकार रही थी कि हे प्रभु, आकर के तुम मुझे बचाओ। और जो है वो साड़ी का कोना जो था वो भी पकड़ के रखी थी, छोड़ नहीं रही थी और पुकार रही थी। वो पकड़ा भी था, उसको छोड़ती नहीं थी और पुकार रही थी। तो साड़ियां ऊपर तक आती थी लेकिन नीचे नहीं आती थी, क्योंकि जब तक उसको अंदर में ये भाव था, मैं अपनी रक्षा करूं, मैं अपनी रक्षा करूं, और इसीलिए जो है मैं अपनी रक्षा कर सकती हूं, और ये पल्लू पकड़ा था उसने और पुकार रही थी, तो साड़ियां यहां तक आई, नीचे नहीं आ रही थी। लेकिन जिस समय सरेंडर, सरेंडर हो गए, वो पल्लू भी छोड़ दिया उसने, तब वो सारी साड़ियां नीचे आ गई, कवर हो गई। तो विश्वास उसका नाम है। एक तरफ हम भगवान के लिए कहते हैं हमको विश्वास भी है, और दूसरी ओर हम खुद अपने प्रोटेक्शन के लिए बहुत कुछ करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो विश्वास कहाँ है? और विश्वास नहीं तो भगवान क्या करेगा? यहाँ तक आएगी लेकिन नीचे नहीं आ सकती है। तो विश्वास उसको कहा जाता है जहाँ वो पल्लू भी छोड़ देना, और तब सरेंडर हो जाओ। जब तक सरेंडर बुद्धि नहीं हुए, निश्चय बुद्धि, सरेंडर बुद्धि नहीं हुए, तब तक विजयी या सफलता का अनुभव नहीं कर सकते। जब तक अंदर में ये भाव है मैं कर सकता हूँ, मैं करूँ, नहीं हो सकता है, भगवान की मदद का अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये ज्ञान की बातें बहुत सूक्ष्म है, जिसको समझ लेते हैं उसको सही तरीके से हम अपने जीवन के अंदर हर पल हनुमान की तरह सदा विजयी होने का अनुभव करते हैं। जिसके दिल में एक राम के सिवा और कुछ नहीं, छाती फाड़ करके दिखा देना, अस्टेबल, अचल, अडोल, कभी भी हिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, ओम शांति।